नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को पंजाब का दौरा करेंगे। वे स्थानीय हालात का व्यक्तिगत तौर पर जायजा लेकर प्रभावित लोगों के लिए अधिकतम मदद सुनिश्चित करेंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस दौरे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस संकट को लेकर बेहद चिंतित हैं और इसकी निकटता से निगरानी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
पंजाब में स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। सीमावर्ती राज्य जहां अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है, भारतीय सेना बीएसएफ और एनडीआरएफ के विशेषज्ञों के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्यों में एक दूसरे की मदद कर रहा है। लगभग 2000 गांव और 3.87 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मेरा भारत आपदा मित्र भी प्रभावित जिलों में स्थानीय लोगों की मदद कर रहे हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार से राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की घोषणा कर दी है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 13 तारीख को मणिपुर पहुंचेंगे और दो स्थानों पर जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री के राज्य दौरे पर चर्चा के लिए आज इम्फाल के राजभवन में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सांसद कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में देश भर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं और सांसदों ने विविध मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। केंद्र सरकार के वस्तु और सेवा कर GST के दरों में हाल ही में किए गए सुधार के फैसले को किसानों और आम नागरिकों ने हितकारी बताया है। व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से न केवल छोटे व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि आम जनता को भी राहत मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रचार वाहनों को रवाना किया और योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनाव में मिली हार के बाद आज इस्तीफा दे दिया। वे एक वर्ष से भी कम समय पर पद पर रहे। इस चुनावी हार में उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है। इशिबा ने कहा कि उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। वे अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। नाइजीरिया में उग्रवादी संगठन बोको हराम ने उत्तर पूर्वी बोर्नो राज्य के दारुल जमाल गांव पर हमले कर 60 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। नाइजीरियाई वायुसेना के प्रवक्ता अहिमैन अजोदामे ने कहा कि नाइजीरियाई सेना ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 30 से ज्यादा उग्रवादी मारे गए। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मॉनसून की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि प्रदेश में अब भी रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 से 6 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। उधर उत्तराखंड में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस बीच राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में आज गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। राजधानी के कुछ क्षेत्र अब भी बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है। भारत चौथी बार एशिया कप हॉकी चैंपियन बन गया है। बिहार के राजगीर में आज फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह ने 2 गोल किए जबकि सुखजीत सिंह और अमित रोहिदास ने 1-1 गोल किए। कोरिया के लिए डैनसॉन ने 1 गोल किया। इस बार इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम कोई भी मैच नहीं हारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।